ओम शांति। विश्व की किसी भी संस्कृति या सभ्यता का जब पतन हुआ तो पाया गया उस सभ्यता के जो लोग थे और उस संस्कृति को मानने वाले जो लोग थे उनकी धारणाएं ढीली हो गई या विस्मृत हो गए वो लोग उन सिद्धांतों के। तो जब जब विस्मृति होगी, जब जब धारणाओं की विस्मृति होगी, जब जब हम धारणाओं को छोड़ देंगे, जब जब हम नियम और मर्यादाओं का अनुगमन अनुकरण अनुसरण नहीं करेंगे, तब तब ये संगठन, तब तब ये यज्ञ का किला कमजोर होगा। बाबा ने कहा है तुम यज्ञ रक्षक हो। तुम क्या हो? यज्ञ रक्षक हो। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा उस यज्ञ का? और यदि तुम यज्ञ रक्षक हो, यदि तुम पूर्वज आत्मा हो, तो इस संगठन से एक भी आत्मा यदि बाहर जाती है तो उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। शायद हमारी ही कोई कमी थी, हमारी ही कोई ऐसी चलन थी जिस वजह से उसे यहां से जाना पड़ा। वो दूसरी बात है कि उसका भाग्य कुछ और था, पर तू हमारी ऐसी कोई चलन ना हो, हमारी ऐसी धारणाओं के प्रति कोई ऐसा ढीलापन ना हो कि जो दूसरे के लिए प्रेरणा बन जाए श्रीमत का उल्लंघन करने के लिए। वैसे तो इस ब्राह्मण परिवार में जो धारणाएं हैं, जो नियम है और जो मर्यादाएं हैं वो आप सभी जानते हैं, परंतु जो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, स्मृति और विस्मृति, मर्ज और इमर्ज। ऐसा नहीं कि जानते नहीं है, परंतु कहीं कहीं चीजें मर्ज हो जाती है, दब जाती है, ढक जाती है, उस समय वापस स्मरण की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम कुछ नियमों की चर्चा करेंगे। इस यज्ञ का सबसे पहला नियम, जिसकी हमने कल भी चर्चा की थी सुबह, वो है अमृत वेला। यदि इस जीवन में तीव्र गति से उन्नति करनी है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, यदि हम चाहते हैं कि हम बहुत महान योगी बन जाए और हम चाहते हैं कि हमारी स्थिति अचल अडोल हो जाए, कितनी भी परिस्थिति आए हम प्रभावित ना हो, यदि हम अपने आप को ऐसा स्थित प्रज्ञ महान तपस्वी और महान योगी और बाबा का सपूत बच्चा देखना चाहते हैं जिसको देखकर भगवान स्वयं खुश हो जाए, यदि ये हमारी कामना है, तो वो जो कह रहा है, उसकी जो मत है, उसकी जो श्रीमत है, वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। और सबसे पहली श्रीमत कौन सी है? अमृत वेला। तो जो अमृत वेला नहीं करते या रेगुलर नहीं करते, पंक्चुअल नहीं करते, कभी करते कभी नहीं करते, करते हैं परंतु साधारण, करते हैं परंतु कोई अनुभव नहीं, करते हैं परंतु नींद में है, ऐसा कुछ भी हो तो हम श्रीमत पर नहीं है। कितना भी हम सेवा करें बाहर दिन भर मुरली में आके बैठे परंतु अमृत वेला नहीं कर रहे, वो प्रथम श्रीमत है, उसी का उल्लंघन हो रहा है तो उन्नति नहीं होगी, आत्मा में बल नहीं भरेगा। तो पहला नियम कौन सा है? अमृत वेला। दूसरा नियम है मुरली। मुरली सभी को यहां क्लास में आकर ही सुननी है, जो सभी सुनते भी है ये बहुत अच्छी बात है, परंतु कई बार आलस्य और अलबेलापन छा जाता है। एक बार ज्ञानामृत मैगजीन में 108 कारण आए थे मुरली न सुनने के। उसमें बहुत ही रमणीक कारण थे, बरसात हो रही थी, मौसम अच्छा नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी, मेहमान आ गए थे, रात को लेट सोए थे, बहुत सारे कारण थे, तो वो हम चेक करें स्वयं को क्या कारण है। दूसरा, क्लास में आने के लिए हमारा बाबा ने एड्रेस दिया है, हम स्पिरिचुअल आर्मी हैं, साल्वेशन आर्मी हैं, ड्रेस और बैच लगा हुआ हो। कई लोग डर के मारे बैच नहीं लगाते, लोग क्या कहेंगे, डरते हैं बहुत, शायद निश्चय कम है। अभी भी बैच लगाते, छोटा सा यहां पर दिखाई भी नहीं देता है, इतना छोटा ताकि लगा भी है और कोई देखे भी नहीं। बाबा ने कहा ये बैच तुम्हारी गीता है, शास्त्र है, इसको देखकर कितने ज्ञान में आ जाएंगे। क्या है ये, कौन है ये लोग, अल्लाह लोग, न्यारे लोग, क्या इनके सिद्धांत है। वो श्वेत वस्त्र देखकर ही कई लोग ज्ञान में आ जाएंगे। हमें डर लगता है, परंतु आपने देखा होगा वो सिख लोग जो पहनते हैं, कि अभी उनको कभी लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लगता है ऐसा, वो जीवन है उनका। तो ये श्वेत वस्त्र कम से कम जब हम क्लास में आते हैं तब, और ये बैच क्या हो, लगा हुआ हो, और हमारे वस्त्र भी दिखावे वाले ना हो, फैशन वाले ना हो, ऐसे ना हो कि किसी को वो आकर्षित करे और कुदृष्टि हो जाए किसी की। कोई हम में ना फंसे, हम किसी में ना फंसे और कोई हम में भी ना फंसे। हमारी बुद्धि किसी में ना जाए ये तो पता है, पर दूसरों की भी बुद्धि हम में ना जाए। यदि हमारी देह की ओर किसी और का आकर्षण हो रहा है, ये दोष उनका नहीं है, उनका भी होगा पर हमारा भी है, जरूर हमारे अंदर ऐसी इच्छा भी होगी। विनोबा भावे का नाम सुना होगा आपने, समाज सेवक थे। वो लिखते हैं, एक बार मैं एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था, एक स्त्री थी जिसने गजरा लगाया हुआ था। वो पूछते हैं, ये गजरा तुमने क्यों लगाया, क्या तुम उस गजरे को देख सकती हो? वो कहती नहीं। तो किस लिए है फिर, दूसरों को दिखाने के लिए? हमारी ड्रेस मर्यादा युक्त ड्रेस हो, ऐसी ड्रेस ना हो जिससे किसी की बुद्धि हलचल में आ जाए, चाहे स्त्री चाहे पुरुष। जैसे कहा, यह रूहानी ब्यूटी पार्लर है, संसार के जो साधन है सौंदर्य के, वो हमारे लिए नहीं है। वो तो वो करते हैं जो अधिक कुरूप है, जो जितना अधिक कुरूप वो उतना अधिक ब्यूटी पार्लर में जाएगा, क्योंकि है तब तो वो सुंदर बनना चाहता है, और वो भी कृत्रिम रीति से, आर्टिफिशियल। हमारा जो सौंदर्य है वो नेचुरल है, हमारा प्यूरिटी का सौंदर्य है, और देह जो है ये तो विनाशी है। ब्यूटी इज बट स्किन डिप। इसके लिए ये दूसरा नियम है, क्लास में आना, टाइम पर आना। बाबा ने कभी मुरली में कहा है, टीचर आ जाता है और स्टूडेंट्स लेट आए तो ये क्या है, जैसे टीचर का अपमान, डिसरिगार्ड, इंसल्ट। टाइम पर आना, ड्रेस पहन के आना, बैच लगा के आना। अरे प्यार किया है तो डरना क्या, ओखली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डर, क्या कहेंगे दुनिया वाले, कहने दो जो कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा। हम यदि अपनी धारणाओं पे पक्के रहे तो उनको झुकना पड़ेगा, सबको, चाहे कितने भी विरोधी हो, सब झुक जाएंगे एक दिन। तीसरा नियम, भोजन। जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी, किस कमाई से आ रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, कहां बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है, किस वातावरण में बना रहा है, मनोदशा क्या है, चित्त की दशा क्या है बनाते समय, और किस भाव दशा में उसे स्वीकार किया जा रहा है। टीवी के सामने बैठ के भोजन कर रहे हैं, बातें करते करते भोजन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बिजनेस की बातें चल रही है, फोन पर बात भी चल रही है, लैपटॉप पे काम भी चल रहा है, इधर व्हाट्सएप पे भी कुछ कुछ चल रहा है और इधर भोजन भी चल रहा है, तो क्या कहेंगे। वो भी एक योग का समय है, कल जैसे कहा था वो भोजन मन बन रहा है जाकर, तो कितना हमारा ध्यान है। तो उसमें एक बात कही थी, भोग जो नहीं लगाते हैं घर पे वो लगाए। नेक्स्ट जो नियम है वो है ट्रैफिक कंट्रोल। जो भी ट्रैफिक कंट्रोल के टाइमिंग है, अगर वो हमें सूट नहीं होते हैं तो हम अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद बनाएं। छोटे छोटे योग के प्रयोग, आत्माभिमानी स्थिति, स्वमान के प्रयोग, आत्मिक दृष्टि के प्रयोग, कुछ ना कुछ उसमें करते रहे। उसके बाद है कर्म योग, कर्म करते करते योग, बीच बीच में बाबा की याद, या एक एक स्वमान को एक एक कर्म के साथ जोड़ देना। ड्राइविंग कर रहे हैं तो वहां पर भी ये सोचे, मुझसे पवित्रता की किरणें फैल रही है चारों ओर। कोई भी स्थूल कार्य कर रहा है तो सोचो, ये मैं बाबा के लिए कर रहा हूं, भगवान के लिए कर रहा हूं, ये उसका कार्य है, मेरा नहीं। बार बार उसको बीच बीच में याद करना और उसको अर्पण कर देना, वो कार्य ये उसका है, ये तुम्हारा है। किसी ना किसी रीति से उससे जुड़े रहना है। ऐसा ना हो कि सुबह याद था और बीच में एक लंबी गैप हो गई 8 घंटे की और 10 घंटे की, और शाम को जागृति आई कि बाबा भी है, उसको भी कुछ करना होता है। कर्म में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि भूल ही जाता है, फिर बाद में शाम को याद आता है 5 बजे 6 बजे, तो ऐसा ना हो। उसके बाद है नुमा शाम का योग, जहां पर भी है हम आधा घंटा निकाल के बैठ के योग करें, याद करें। अगर इतना व्यस्त है तो चलते फिरते करें, पर करें, क्योंकि हमें विश्व की आत्माओं को सकाश भी तो देनी है, प्रकृति को भी सकाश। हमारे बहुत सारे कार्य है जो अधूरे रहे हुए हैं, वो सारे कार्य हमें करने हैं। उसके बाद है नींद का समय, नींद के पहले क्या करें। जो हमने अमृत वेले का जो क्लास था उसमें भी थोड़ा विस्तार किया था, परंतु याद करके सोना, थोड़ा सा कुछ अव्यक्त वाणी पढ़ के सोना, या ज्ञान का चिंतन करना, या किसी के साथ चर्चा करना ज्ञान की, अगर कोई साथी है तो थोड़ी बैठकर ज्ञान की चर्चा करना कि आज बाबा ने क्या क्या कहा था, और फिर याद करके सो जाना। ये कुछ नियम थे। कुछ गहरी बातें हैं, वो है मर्यादाओं की बातें। ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा, सभी अलर्ट होके बैठेंगे। एक छोटा सा संकल्प कि मैं आत्मा आज से जो भी इस यज्ञ के नियम और मर्यादाएं बनी हुई है उसका पालन करूंगा, करूंगी, और बाबा की किरणें मेरी ऊपर, मुझ आत्मा पर पड़ रही है, और मुझ आत्मा में वो शक्ति भर रही है इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए।
Yeah।
सबसे पहली मर्यादा और सर्वश्रेष्ठ मर्यादा, और ऐसी मर्यादा कि अगर उसका पालन नहीं किया जाए तो हम ब्राह्मण ही नहीं कहलाए जा सकते, और वो है ब्रह्मचर्य और पवित्रता। चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे गृहस्थी हो या सेंटर पर रहने वाले, कोई भी कन्या, बहन, कुमारी, भाई, कुमार, कोई भी, सबके लिए एक नियम है, एक मर्यादा है। वो कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता की मर्यादा। हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति संपूर्ण पवित्र हो। भगवान का आगमन ही संसार में केवल और केवल पवित्रता की स्थापना के लिए हुआ है। वो आया ही है पतित को पावन बनाने के लिए। यदि उसको पाकर, यदि उसके ज्ञान को पाकर, उसका बनकर फिर भी हमारी दृष्टि वृत्ति विकारी है, फिर भी हमारे बोल में विकार की वायु है, फिर भी हमारी हंसी मजाक में विकारों की गंध है, अब भी हमें इंटरेस्ट है जिस दुनिया को हम छोड़ आए, वहां के मनोरंजन देखना, सुनना, वो जो संसार के हीरो और हीरोइन है, जो कि चरित्र की दृष्टि से संपूर्ण पतित है और पतन हो चुका है, उनको अपना रोल मॉडल बनाना, उनको अपने एंटरटेनमेंट का साधन बनाना, उनको अपनी प्रेरणा बनाना, उनके जीवन के बारे में जानना, किसकी शादी हुई है, किसकी नहीं हुई है, किसका क्या चालू है, किसने क्या कहा, किसके बारे में न्यूज में क्या आ रहा है और कौन सा चैनल क्या दिखा रहा है। ना तो वो भगवान को जानते हैं, ना तो स्वयं को, ना ही इस ड्रामा को। ऐसे अज्ञानी, निपट अज्ञानी, क्या वो हमारे आदर्श है? क्या वो जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे मनोरंजन का साधन है? यहां बाबा संपूर्ण पवित्रता की स्थापना करने आया है। तो जो संपूर्ण पवित्र है वही हमारे रोल मॉडल है। यदि हमारी बुद्धि अब भी उन सभी लोगों में जा रही है तो क्या कहेंगे? तो इस यज्ञ का सबसे पहला नियम ही कौन सा है? ब्रह्मा बाबा को कहा गया, बाबा इस एक नियम को आप हटा दो, यहां भीड़ लग जाएगी, ये एक नियम के वजह से इतना विरोध हो रहा है, आप इसको थोड़ा बाजू कर दो तो यहां बहुत भीड़ हो जाएगी। बाबा ने क्या कहा था? मुझे भेड़ बकरियां नहीं चाहिए, मुझे शेर और शेरनियां चाहिए जो दहाड़ लगाए, कम आए तो चलेगा। हम जहां ऊपर ठहरे हुए हैं यहां पर, वहां पर एक स्लोगन लिखा हुआ है बोर्ड पर, चूहे जैसा जीने से अच्छा, 100 दिन भी जीने से अच्छा से शेर जैसा एक दिन भी जियो और मर जाओ तो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ऊंची बात है। तो हमें भेड़ बकरियां नहीं बनना है। बाबा ने कहा मुझे भेड़ बकरियां नहीं चाहिए, शेर और शेरणियां चाहिए, क्योंकि पवित्रता की धारणा करना ये कोई मासी का घर नहीं है। ऐसा विकारी वातावरण, चारों ओर विकारों की वासनाओं की वायु और आंधी बह रही है, हर चैनल, हर न्यूज, हर उपन्यास, हर नॉवेल, एक ही एक बात है बस, चारों ओर विकार ही विकार है, वायलेंस ही वायलेंस है। ऐसे विकारी वातावरण में कोई पवित्रता की धारणा करे कितनी ऊंची बात है। परंतु हम इस दुनिया में सर्व महान है, बाबा को हम पर विश्वास है, उसे पता है कि यही वो देवता थे जिनके जीवन में संपूर्ण पवित्रता थी। तो फिर से अपनी इसी प्रतिज्ञा को रिवाइज करना है, इसी प्रण को बाबा के सामने फिर से करना है और अपने आप से भी करना है। कि कुछ भी हो जाए इस देह को नहीं देखेंगे। ये देह सांप है, सांप में विष होता है। मणि को देखना है तो सबसे पहली धारणा है पवित्रता। दूसरी धारणा, ये कौन सी जगह है? ये सेवा केंद्र कोई साधारण स्थान नहीं है, ये मधुबन है, भगवान का स्थापन किया हुआ है, ये पवित्र स्थान है, पवित्र मंदिर है। इस स्थान पर आकर संसार की चर्चा करना, बिजनेस की बातें करना, इस स्थान पर आकर लेन देन की बातें करना, ये ईश्वरीय नियम नहीं है। इस स्थान पर आकर टीका टिप्पणी करना, इस स्थान पर आकर ग्लानी करना, निंदा करना, या बहनों के विरोध में कुछ करना, जिनको स्वयं भगवान ने निमित्त बनाया, कल भी कहा था, वो कौन है? मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वही है। गुटबाजी, अपना गुट तैयार करना अलग से, प्रोग्राम करना और बिना बताए करना, सेवाएं करना बिना बताए सेवा करना, अपनी मनमत चलाना, खुद इंचार्ज बन जाना, ये सब मर्यादाएं नहीं है। दूसरे सेवा केंद्र पर जाना और यहां से कोई परमिशन लेटर लेकर नहीं जाना या मधुबन में जाना, ये सब नियम नहीं है। इन सभी मर्यादाओं का ध्यान रखना है तो इस सेंटर के प्रति अपनी दृष्टि बहुत ऊंची रखनी है, इन बहनों के प्रति अपनी दृष्टि बहुत पवित्र और बहुत ऊंची रखनी है, और तीसरा मधुबन। चाहे वहां कुछ भी हो रहा है परंतु वो भगवान का स्थापन किया हुआ है, इसके लिए मधुबन की ग्लानी करना या मधुबन निवासियों की ग्लानी करना, देख लिया सब कुछ, पता है सब कुछ, ऐसा कहना, ये इस यज्ञ की मर्यादा नहीं है। क्या ज्ञान है हमारे पास, क्या समझाया है हमने, क्या भगवान को पूरा समझ लिया? वो कह रहा है ये मेरा मधुबन है, वो कहता है कि कितनी महिमा गाई है उसने मधुबन की। अभी अभी मुरली चली थी पूर्वज वाली, उसमें मधुबन निवासियों से मुलाकात थी, याद है ना, कितनी महिमा की थी बाबा ने, तुम महात्मा हो, चैतन्य लाइट हाउस हो, लाइट का गोला हो, बहुत महिमा की है। भगवान की अवतरण भूमि है, भगवान के कदम वहां पर पड़े हैं, ऐसी वो पवित्र भूमि है। और वहां जाकर भी हम अगर धंधे और बिजनेस की बातें करें, वहां जाकर भी हम निंदा और ग्लानी की बातें करें, वहां जाकर भी हम सेंटर की ग्लानी करें अपने या दूसरों के सेंटर की ग्लानी करें कि वो बहन ऐसी है, वो सेंटर ऐसा है, वहां ये होता है, किस लिए जा रहे हो? वहां भगवान से मिलने जा रहे, भगवान के अवतरण में जा रहे, भगवान के सामने बैठने वाले हैं, परंतु बुद्धि लगी है कहीं और, बुद्धि लगी है घूमने फिरने में, बुद्धि लगी है मार्केटिंग और शॉपिंग में, बुद्धि लगी है कहीं साइट सीइंग जाने में। वहां जो नियम है और वहां जो मर्यादा है, वहां जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं, उनका हम उल्लंघन कर रहे हैं। वहां जाकर भी वही सब कर रहे हैं, वहां जाकर भी 10 बार घर पे ही फोन चालू है। वहां गए थे तपस्या करने, वहां गए थे भगवान से मिलने, उस भूमि पर, धन्य भूमि वन पंत पहारा, जहां जहां नाथ पावत तुम धारा, जहां पर भगवान ने पैर धरे हैं, ऐसी वो भूमि, ऐसी धन्य भूमि, वहां जाकर हम क्या करते हैं? गलतियों को देखते हैं, वहां जो भोजन मिल रहा है अगर उसमें हमें कुछ दोष दिखाई देता है, एकोमोडेशन में दोष दिखाई देता है, तो उसको क्या कहेंगे? क्या वो मर्यादा है? जो फैसिलिटीज वहां मिलती है उसमें दोष दिखाई देता है, वहां ये नहीं है, वहां वो नहीं है। दादी जब आई तब क्या था वहां? कुछ नहीं था। दादी जान की 4 साल के बाद जब लौटी थी विदेश से, वही साड़ी पहनी थी जो पहन के गई थी। उस साड़ी को देखकर पता चलता था कैसा जीवन उधर बिताया है। वो जो 4 साल थे, शुरुआत के 74 से अगले 4 साल 78 तक, कोई सेवा विशेष बड़ी नहीं। कैसा त्यागी और तपस्वी जीवन था वो। इसके लिए मधुबन बाबा से प्यार अर्थात मुरली से प्यार, बाबा से प्यार अर्थात सेवा केंद्र से प्यार, बाबा से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार। अगर ये नहीं है और फिर हम कहते हैं बाबा से प्यार है तो प्यार झूठा है। दूसरे सेंटर पर जाना या मधुबन जाना, परमिशन लेकर जाना, ये नियम है यहां का। कोई भी सेवा का प्रोग्राम करना उसमें परमिशन लेना, ये नियम है यहां का, ये मर्यादा है। बिना पूछे हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि भगवान ने जिन्हें निमित्त बनाया है उनसे हम पूछ रहे हैं। उनको पूछना अर्थात उसको पूछना। और हमारे पास यदि कोई समस्या है जीवन की, उसकी राय सलाह करना, यदि पवित्रता की धारणा नहीं हो रही है तो बहन से, बहन जी से बैठकर पूछना क्या किया जाए। ऐसे नहीं कि अपवित्रता के कर्म हो ही जा रहे हैं और सेंटर पर भी आना चालू है और मधुबन में भी जा रहे हैं, ये ना हो। तो बैठकर क्या करना? पूछना, राय सलाह करना। दूसरा एक मर्यादा है दिव्य गुणों की धारणा। हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका चार्ट देना, चार्ट लिखना, यह भी एक नियम है यहां का। सब कुछ लिख कर देना, कुछ भी छिपाना नहीं। बाबा ने कहा छिपाए तो क्या होगा, बीमारी बढ़ेगी। और दूसरों के जीवन में, जैसे मुरली में भी कहा, क्या हो रहा है उसमें इंटरफियर नहीं करना है। यज्ञ के कारोबार में यदि आपका काम है तो ही इंटरफियर करना है, वरना नहीं। कोई एक टॉपिक लेना और उसका विस्तार करना, बात छोटी बात को बड़ा करना, फैलाना, या यहां की बात को कहीं और फैलाना, इसको क्या कहेंगे। हमें याद है एक बार रमेश भाई जी क्लास करा रहे थे, उन्होंने एक जगह की बात बताई थी। बात इतनी अच्छी नहीं है पर हम बताएंगे। शिवरात्रि का प्रोग्राम था, सेंटर के कुछ भाई गवर्नर के पास गए कि हमारे सेंटर पर आइए, शिवरात्रि का प्रोग्राम रखा हुआ है। कुछ समय के बाद उसी शहर के दूसरे सेवा केंद्र के कुछ भाई उसी गवर्नर के पास पहुंचे, सेक्रेटरी के पास, और उसको कहा कि हमारे पास आइए। तो सेक्रेटरी ने कहा आपके पास तो एक आपका जो दूसरा केंद्र है हम वहां पहले से जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो अच्छा नहीं है, आप हमारे पास आइए। क्या कहा? वो लोग अच्छे नहीं है, आप हमारे सेवा केंद्र में आइए, वो तो अज्ञानी लोग हैं, उन्हें क्या पता। दूसरे सेंटर की ग्लानी करना, उनको कम समझना, ये मर्यादा नहीं है। फिर है एक दूसरे में फंसना, ये बहन बहुत अच्छी है। मुरली में एक बार आया था, बच्चे कहते हैं बाबा ये बहन बहुत अच्छी है, बाबा ये बहन बहुत मीठी है। बाबा कहते हैं अरे बहन मीठी नहीं है, मुरली मीठी है। फंस जाना, अगर वो चले जाए तो फिर हलचल। जो यहां बैठा है उसको नहीं देखना है, मुरली किसकी है? बाबा की है। चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे वो छोटी सी कन्या ही क्यों ना हो, हम ये नहीं कह सकते ये कन्या हमको क्या सिखाएगी। हम तो इतने सालों से आ रहे हैं, ये कन्या और हमको सिखाएगी मुरली? और एक दूसरी बात, चाहे कोई कितना भी छोटा हो, चाहे वो कन्या हो या छोटा कुमार हो, ये नहीं भूलना है। आपको क्या पता वो क्या करके आई है आत्मा, कैसी तपस्या कर आई है। चाहे सेंटर पर छोटी सी कुमारी क्यों ना आ जाए, परंतु ये मत भूलो कि वो आत्मा कौन सी आत्मा है, हमें नहीं पता। कितने जन्म वो पवित्र रही होगी, हम तो यहां संघर्ष कर रहे हैं पवित्रता का इतने सालों से भी। वो छोटी सी आत्मा आई है, परंतु कितने जन्म वो पवित्र होगी, कितनी उसकी तपस्या होगी, हमें क्या पता उसके बारे में। इसके लिए ये नहीं समझना कि ये कन्या हमें क्या सिखाएगी, ये तो बहुत छोटी कन्या है। और एक दूसरा नियम, एक दूसरे को अगर हम आप कहें तो बहुत अच्छा, चाहे छोटा भी क्यों ना हो। हमारे एक दूसरे के जो संबंध है उसमें लौकिकता ना हो, नहीं तो उससे घृणा और ईर्ष्या पैदा होती है। और हमारे जो एक दूसरे के संबंध है, अलौकिक संबंध भी बंधन है, बाबा ने कहा। एक इन संबंधों में वो एक लगाव, झुकाव, आसक्ति उत्पन्न हो गई तो तुरंत विकार की शुरुआत हो सकती है। आगे स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप कहां से कहां लेके जाती है। सुबह बहनों की क्लास में हमने एक कहानी सुनाई, वो कहानी सुना के इस क्लास को पूरा करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक किताब लिखी है, शोशीर कोबिता, बंगाली में किताब है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन है द लास्ट पोएम। जिस किताब में उन्होंने वर्णन किया है एक राजकुमारी का, जिसको प्रेम है एक कुमार से, एक युवक से, और उस युवक को भी उस कुमारी से प्यार है, उस राजकुमारी से, और दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। वो जो कुमार है थोड़ा गरीब है, ये जो राजकुमारी है थोड़ी संपन्न है, समृद्ध है। तो शादी तो वो करना चाहते हैं, परंतु वो राजकुमारी कहती है मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? शादी के बाद हम एक साथ नहीं रहेंगे, तुम उस ओर रहोगे, हम इस ओर रहेंगे, बीच में एक झील होगी, वो जो महल है वो तुम्हारा महल और ये जो महल है ये मेरा महल। वो राजकुमार कहता है ये कैसी शादी है, शादी कर रहे और दूर दूर रह रहे, ऐसी तो शादी हमने ना सुनी ना कभी देखी। वो कहती है बस यही मेरी शर्त है। पर और वो इतना भी कहती है अगर तुमने मेरे से शादी नहीं की, वो राजकुमारी कहती है, तो मैं तुम्हारी याद में सारा जीवन बिता दूंगी और किसी से शादी नहीं करूंगी, करूंगी तो तुमसे ही करूंगी, परंतु हम अलग अलग रहेंगे, बीच में झील होगी, कभी मिल लिए तो मिल लिए, कभी एक दूसरे को आमंत्रण नहीं देंगे, कोई प्लानिंग नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी, मिल लिए तो मिल लिए। तुम उधर से नौका विहार कर रहे हो, मैं इधर से कर रही हूं, तुम उधर से आ रहे हो, मैं इधर से आ रही हूं, मिल लिए तो मिल लिए। वो कहता है ये कैसी शर्त है। वो कहती है यही मेरी शर्त है। क्यों? वो कहती है कि यदि हम एक साथ रहे तो एक दूसरे को जानेंगे, फिर एक दूसरे की कमियां नजर आएगी और उन कमियों से फिर हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अभी हमारा एक दूसरे से जो शुद्ध प्रेम है वो कम हो जाएगा, अभी जो निर्विकारी प्रेम है वो विकारी बन जाएगा। इसके लिए प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूं और तुम ही से करूंगी, परंतु हम अलग अलग रहेंगे। कहानी और भी है आगे, परंतु कहने का भाव हमारे जो संबंध हो उसमें क्या हो, डिटैचमेंट हो। बहुत ज्यादा जहां अटैचमेंट हो जाती है वहां टकराव उत्पन्न होता है, लगाव उत्पन्न होता है। इसके लिए हम कहीं पर भी रह रहे हैं, सबकी सेवा करे, सबके साथ रहे, सबको प्रेम दे, सबका सहयोग ले दे, सबके बीच बच्चों की पालना, पति को देखे, सबको, पत्नी को देखे, सब, परंतु बीच में क्या हो, झील, बीच में हो झील, वो उधर हम इधर। तो बहुत प्रेम से आप सभी ने दो दिन तक यहाँ जो भी बातें बताई गई वो सुनी। एक दिन सुबह अमृत वेला और भी है, जो आ सकते हैं उसमें आए। और इन दो दिनों की बातों में यदि हमने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो या ऐसी कोई बात कह दी हो जिससे किसी का हृदय विदीर्ण हुआ है, तो छोटा कुमार समझकर या छोटा भाई समझकर या बेटा समझकर माताएं ज्यादा है, हमें माफ कर देना। ओम शांति।